पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें, अपने वचन के भेद को आप हमारे पर खोलें और हम सबको सुनने वाले कान दें, मनन करने वाला हृदय दें, ना सिर्फ इस वचन को सुने, ये वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें लोग ज़्यादातर जो जिस चीज़ के पीछे जो भाग रहे हैं, जिस चीज़ को पाने की जो इच्छा रख रहे हैं, वो है पैसा। क्या है? और पैसे को पाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए, संडे जो चर्च है उसको मिस करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और बीच की जो प्रेयर मीटिंग होती है उसको भी मिस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पैसा एक ऐसा चीज़ है जो किसी का खून भी करा सकता है, जैसे हम न्यूज़ के अंदर देखते हैं, पैसा रिश्ता भी तोड़वा सकता है, बहुत सारी बातें पैसा कर सकता है। और आज जो हम देखने जा रहे हैं उसमें एक धनवान व्यक्ति है और एक बहुत गरीब व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? धनवान व्यक्ति और कौन सा व्यक्ति बनना चाहेंगे? कौन सा व्यक्ति हम बनना चाहेंगे, धनवान या गरीब? रमन भाई,
गरीब या अमीर?
हैं?
धनवान बनना चाहूंगा।
धनवान। क्या हम में से कोई ऐसा धनवान बनना चाहेगा कि यीशु मसीह उसको ना चुने और वो हमेशा के लिए नरक में डाला जाए? क्या कोई ऐसा गरीब बनना चाहेगा जिसको यीशु मसीह ने चुन लिया और वो अंतिम में हमेशा के लिए अनंत काल के जीवन में प्रवेश करे? मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन प्रभु जानते हैं। और ये जीवन भाप की तरह है, ये जीवन एक धूल की तरह है, ये जीवन हमेशा के नहीं, हमेशा का जीवन नहीं है जिसको हम जी रहे हैं। एक ना एक दिन नाश होगा, ये जो शरीर है ये मट्टी है, एक दिन मट्टी में मिलने वाली है। हम में से कोई भी रोक नहीं सकता इस शरीर को मट्टी में मिलने से, समझ रहे हैं आप? एक ना एक दिन मिलेगा, लेकिन बात ये कि जो प्रभु ने हमारे अंदर जो अपने आत्मा को डाला है, हमारे नतनों में जो श्वास डाला है, वो आत्मा कहाँ जा रहा है? क्या वो नरक की तरफ जा रहा है या स्वर्ग की तरफ जा रहा है? ठीक है, एक कहानी के साथ में शुरू करूँ। उस कहानी में पैसा कमाने के लिए एक इंसान देखो क्या बन गया है, पैसा कमाने के लिए इंसान, एक व्यक्ति था जो बेरोजगार था, व्यक्ति था जो बेरोजगार था और उसके बच्चे थे, वाइफ थी और जगह जगह गया, उसके जॉब की तलाश थी, जो प्रोफेशन उसका था उस हिसाब से उसको जॉब कहीं नहीं मिल रही थी, जो पैसा उसको चाहिए था उस प्रकार से उसको कहीं जॉब का उसके लिए इंतजाम नहीं हो रहा था। तो एक बार वो जब जा रहा था तो उसने एक सर्कस के पास से निकला, जू के पास से निकला, चिड़ियाघर के पास से निकला। चिड़ियाघर जानते हैं ना सन्नी भाई, चिड़ियाघर जानते हैं? चिड़ियाघर के पास से निकला और चिड़ियाघर के अंदर गया और चिड़ियाघर के अंदर जाकर वहाँ के मैनेजर से बोलने लगा कि मुझे जॉब की तलाश है, मेरे जो छोटे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मैं जो करना चाहता था, जो जॉब की तलाश थी मुझे नहीं मिली, मुझे जो भी जॉब देंगे नौकरी देंगे उसको मैं करने के लिए तैयार हूंगा। मैनेजर ने बोला कि यहां पे कोई जॉब नहीं है, यहां पे कोई नौकरी नहीं है आपके लिए, यहां पे चिड़ियाघर है, यहां पे जानवर रहते हैं, यहां पर अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं, आप क्या काम करेंगे? उसने बोला मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। उसने बोला मैं माफी चाहता हूं, यहां पे कोई जॉब नहीं है। वो जब जाने लगा तो उस मैनेजर ने उसके डिलडोर को देखा, क्या देखा? डिलडोर को देखा, वो लंबा तगड़ा हट्टा कट्टा था। उसने बोला हाँ एक जॉब है, क्या तुम करने के लिए तैयार हो? उसने बोला हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप जो भी जॉब देंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसने बोला हमारे यहाँ पर एक चिंपैंजी मर गया है, गोरिल्ला मर गया, और क्या तुम गोरिल्ला बनकर लोगों का इंटरटेनमेंट कर सकते हो? उसने बोला हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे जॉब चाहिए। क्या चाहिए? जॉब चाहिए। उसने बोला ठीक है आ जाओ मेरे साथ। उसने बोला कि ये जो कपड़ा इसको पहन लो, अब थोड़ी देर में लोग आने वाले हैं तो मैं उनका इंटरटेनमेंट करना है, तुम्हें लोगों को खुश करना है, जब लोग आएंगे तुम्हें देखने के लिए। उसने बोला मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। उसने बोला ठीक है, उसको गोरिल्ले का कपड़ा पहना दिया और पूरा मतलब गोरिल्ले की तरह वो दिखने लगा और उसको पिंजरे में डाल दिया। ठीक है, जब उसको पिंजरे में डाल दिया, लोग आए और लोगों को वो छाती पीट पीट के पीट पीट कर वो क्या कहते हैं अपने पिंजरे पे चढ़ चढ़ कर कूद कूद कर वो लोगों का मनोरंजन करने लगा और लोग बहुत खुश होने लगे। ओ वाह कैसा गोरिल्ला है, वाह ऐसा गोरिल्ला तो हमने कभी देखा नहीं है, वो कैसे कूद रहा है, कैसे अपने आप को पीट रहा है। और लोग बड़े आश्चर्य करने लगे, लोग बहुत आनंद उठाने लगे और लोग वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई। वो और भी ज्यादा उत्साहित में उत्साह भर गया, उत्साह में भर गया और वो पिंजरे में कूदने लगा कूदने लगा कूदने लगा और लोग ताली बजाने लगे और वो कूदते कूदते शेर के पिंजरे में जाके गिर गया। अब शेर के पिंजरे में गिर गया, गोरिल्ले ने शेर को देखा और शेर ने गोरिल्ले को देखा और शेर बड़ी तेज की दहाड़ा, बहुत तेज की दहाड़ा और लोग बोलने लगे अब क्या होगा, अब तो गोरिल्ले की भाई सामत आ गई। फिर गोरिल्ले ने जब लोगों को देखा और गोरिल्ला भी बड़ी तेज की दहाड़ा, उधर शेर दहाड़ा दोबारा, फिर इधर गोरिल्ला दहाड़ा, लोग सोचने लगे अब इनके बीच में लड़ाई होने वाली है, अब देखते हैं गोरिल्ला जीतेगा या फिर शेर जीतेगा। फिर गोरिल्ला डर गया, गोरिल्ला बोलने लगा बचाओ 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 बचाओ, मैं शेर की मांद में गिर गया हूं, शेर की पिंजरे में गिर गया हूं। लोग बोलने लगे अरे कैसा गोरिल्ला है, ये तो भाई हिंदी में ही बात कर रहा है, हिंदी में चिल्ला रहा है, हिंदी में जानता है। उधर शेर उसके पास चुपके से आया, उसने बोला चुप हो जा चुप हो जा, हमारी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि वो भी नकली शेर था। पॉइंट यहां पर यह है इस कहानी को सुनाने का, लोग पैसे को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी। और जब पैसा एक वस्तु है, और जो इस कहानी को हम देखने जा रहे हैं मेरे साथ निकाल दे 16वां अध्याय उसका 19 पद से हम देखेंगे, 19 पद से देखेंगे। देखो यहां पे क्या लिखा है,
एक धनवान मनुष्य था जो
क्या है, एक धनवान
मनुष्य था,
एक धनवान मनुष्य है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ,
जो बेजनी कपड़े और मलमल पहनता और
ठीक है, क्या करता है ये भाई, उस समय बेंजामिन कपड़े और मलमल पहनता था, मतलब ऐसे कपड़े जो बहुत महंगे थे, ऐसे कपड़े जिनको पहनकर लोग बोले वाह क्या कपड़े पहन रखे, काश ऐसे कपड़े हम मेरे पास भी होते, ऐसे महंगे महंगे कपड़े वो धनवान व्यक्ति पहनता था। जैसे हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, पसंद करते नहीं करते, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अलग अलग प्रकार से शॉपिंग करते हैं, तो उसे ऐसे महंगे कपड़े पहनता था। हाँ,
और प्रतिदिन सुख विराम और धूम धाम के साथ रहता था।
ठीक है, और क्या कर रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था और प्रतिदिन हर दिन उसको त्योहार की तरह रहता था, हर दिन वो धूमधाम मचाता था, हर दिन वो क्या कहते हैं खूब खाता था, लोगों को बुलाता था और रोज त्योहार की तरह जीवन को व्यतीत करता था। कौन ये अमीर व्यक्ति, हाँ धनवान व्यक्ति।
लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेबरी पर छोड़ दिया जाता था।
ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कंगाल है, जिसके पास कुछ पैसे ही नहीं है और उसमें घाव भी है शरीर में, क्या है घाव समझते ना आप, चोट उसके शरीर में घाव भी है और उसकी डेवड़ी पर मतलब उसके घर के पास में उसको छोड़ दिया जाता था। हाँ,
और वे चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे।
ठीक है, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति कौन है, कौन है एक व्यक्ति, धनवान जिसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ना पहनने की कमी है, ना खाने की कमी है, ना पैसे की कमी है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और हर दिन वो त्योहार की तरह बनाता था। और यहाँ दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम लाजर है, जो कंगाल है, इसकी उसके बारे में बता रखा है ये कंगाल है। दूसरी बात क्या है, घावों से भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, और उसके पास खाने के लिए नहीं है। ठीक है, खाने के लिए नहीं है, इसलिए वो अमीर व्यक्ति की डेवड़ी पर घर के पास छोड़ दिया जाता था, ताकि जो झूठन है, जो भाई जो फेंकने वाला जो जो खाना है उसको खाकर वो क्या कर सके अपना पेट। और साथ में क्या हो रहा है उसके साथ में, गरीब व्यक्ति के साथ में, लाजर व्यक्ति के साथ में, उसके घावों को कौन चाट रहा है? कौन चाट रहे? मतलब दवाई लगाने के लिए पैसे नहीं है, उसके घावों कौन चाट रहे? कुत्ते चाट रहे। ये अमीर व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वो जानता है कि यहां पर एक लाजर नाम का एक व्यक्ति भी मेरे झूठन को खाता है, मेरे बच्चे हुए खाने को खाता है, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है वो, समझ रहे? पैसे होते हुए भी। और यहां पर ही जो अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति है इसके बारे में ही देखेंगे, वो कहीं मांग भी नहीं रहा है उससे, यहां पे कहीं लिखा भी नहीं कि वही अमीर व्यक्ति को बोल रहा है मेरी चोट लग रही है मेरी दवाई के लिए कुछ खर्चा दे दो। वो मांग भी नहीं रहा है, वो खाने के लिए भी नहीं मांग रहा है, वो वही अपने घर के लिए भी नहीं मांग रहा है, किसी प्रकार की चीजों को नहीं मांग रहा है। ये दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक पूरा अमीर है और एक पूरा गरीब है, दो प्रकार के व्यक्ति हैं। और आगे देखो क्या हो गया।
ऐसा हुआ कि वे कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया।
ठीक है, क्या हुआ? कंगाल व्यक्ति मर गया क्योंकि वो कंगाल था, खाने के लिए नहीं था, और उसकी चोट क्या थी? चोट ज्यादा थी, और इस ऐसी स्थिति में क्या हो गया? वो मर गया। और जब वो मर गया, मरने के बाद कहां गया वो? क्या लिखा यहां पर?
स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया।
ठीक है, यहां पर एक बात है सुनिए, जब कोई व्यक्ति मरता है, जब कोई चुना व्यक्ति मरेगा, जिस प्रकार से यहां पर लिखा हुआ, ठीक है, यीशु मसीह बता रहे हैं, जब कोई व्यक्ति चुना हुआ व्यक्ति जिसको यीशु मसीह ने चुन लिया है, जब वो व्यक्ति मरता है, यहां पे लिखा है कौन लेने आए उसको लेने के लिए? कौन लेने आए? स्वर्गदूत लेने आए। कौन लेने आए? स्वर्गदूत लेने आए, स्वर्ग के दूत लेने आए, और स्वर्ग के दूत लेकर आकर उसको कहां पे बैठा दिया? अब्राहम की गोद में बैठा दिया, क्योंकि अब्राहम को सारे कुलों का पिता बोला जाता है। किसका? सारे कुलों का पिता बोला जाता है, ठीक है, कुल पिता बोला जाता है इसको। हाँ,
बेधर्मान भी और मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा।
ठीक है, यहाँ पर पहले जो स्थिति थी, जब वो दुनिया के अंदर थे, ध्यान दे इधर, जब वो दुनिया के अंदर है, तो अमीर व्यक्ति जिसका नाम बता नहीं रखा है, ये बहुत सुख विलास में है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, हर दिन वो धूमधाम से मना रहा है, जब वो इस दुनिया के अंदर है, और ये जो लाजर है इस दुनिया के अंदर रहते हुए क्या है, वो कंगाल है, दुखी है, परेशान है, घाव है, खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब ये व्यक्ति दोनों जब मरे हैं, एक दिन मरने के बाद ये जो लाजर है इसकी स्थिति बदल गई। लाजर कहां गया है? स्वर्ग में, और स्वर्ग में अब्राहम की गोद में बैठा हुआ, मतलब वो आनंद में है, वो खुशी में है, वहां पे पीड़ा नहीं है, वहां पे दुख नहीं है, वहां पे समस्याएं नहीं है, वहां पे चोट नहीं है, वहां पर घाव नहीं है, और वहां पर वो आनंद के अंदर है। लेकिन जो अमीर व्यक्ति है, इसकी भी स्थिति बदल गई है। इसकी स्थिति बनकर पहले सुख विलास में था, पहले धूमधाम से रहता था, पहले बैंजमिनी कपड़े पहनता था, पहले मलमल के कपड़े पहनता था, लेकिन जब ये मरा है, मरने के बाद कहां गया? अधोलोक में गया। कहां गया? अधोलोक का मतलब क्या है? नरक में। और नरक वास्तविक है, और नरक के अंदर क्या हो गया इसके साथ? उस अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए क्या हो गया है? कहां पर क्या हो रहा है? वहां पर अधोलोक में क्या हो रहा है इसके साथ? अधलोक में क्या है? क्या है? अधलोक में पीड़ा है, मतलब कहां पर डाल दिया गया है? अधलोक में क्या? आग है। क्या है? ये आग की पीड़ा के अंदर है। कौन? ये अमीर व्यक्ति, और आग की पीड़ा में ये तड़प रहा है, आग की पीड़ा के अंदर ये जल रहा है, और आग की पीड़ा में होते हुए इसने क्या करा? अपनी आंखें उठाई और लाजर को उसने कहां देखा? अब्राहम की गोद में देखा। इस दुनिया में रहते हुए, सुनिए, इस दुनिया में रहते हुए हम सब मरेंगे, लेकिन इसके बाद जो असली है वो शुरू होगा, या तो नरक या स्वर्ग। और स्वर्ग में कौन जाएगा? स्वर्ग में वही जाएगा जिसको यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के द्वारा चुन लिया है, और जिसको यीशु मसीह ने नहीं चुना, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो कहां जाएगा? नरक में। कब तक के लिए? और नर्क के अंदर आग है, आग में कौन कौन जाना चाहेगा? हैं? आग में कोई जाना नहीं चाहेगा। मैं तो ऐसे लोग जो मतलब जैसे न्यूज के अंदर दिखाते हैं, आपने देखा होगा लोग कहीं आग लगी, लोग कितनी भयानक मौत मरते हैं ना, आग के अंदर पड़े हुए हैं, निकलना चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, और अंदर ही जलकर भुनकर लोग मर गए, भयानक मौत, जलने से बुरी, मतलब जलकर मरा है व्यक्ति, कितना पीड़ा उसने सहा है। और सोचो यदि रोहित भाई किसी को नर्क में डाल दिया, आग में डाल दिया, कब तक के लिए? हमेशा के लिए, जिसका कोई अंत नहीं है। और जब इस अमीर व्यक्ति ने जब यीशु मसीह की तरफ देखा, जब उसने जब लाजर की तरफ देखा, तो क्या हुआ यहां पर? ठीक है, जब ये लाजर जब इस शरीर में था, इस दुनिया में, इसने कभी अमीर व्यक्ति से मांगा नहीं है, अमीर व्यक्ति के सामने हाथ फैलाया नहीं है इसने। जो झूठा था, हम में से कोई झूठा नहीं खाएगा किसी का, अजनबी का भी जाना पहचाने का रिश्तेदार खा लेगा, लेकिन किसी अजनबी का झूठा अगर पता चल गया, हम में से कोई भी नहीं खाएगा। लेकिन ये इसकी स्थिति ऐसी थी, इसकी परिस्थिति ऐसी थी, भूख इतनी तेज थी कि इसको कोई झूठा फर्क नहीं पड़ता था, झूठा खा रहा, से मांग नहीं रहा, इसको बोल नहीं रहा कि मुझे एक रोटी दे दे, मुझे अभी एक रोटी दे दे ताकि मैं खा सकूं, तेरा झूठा ना खाऊं। लेकिन यहां पर जब स्थिति बदल गई है, यहां पर अब्राहम को बोल रहा है कि लाजर को बोल दे तू क्या कर भाई, पानी का एक वो क्या कर दे, मेरे को दे दे। लेकिन यहाँ पे
मेरी जीभ को ठंडी करे,
हाँ,
क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ।
हाँ,
परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर,
स्मरण कर मतलब याद कर,
तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वे यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई जहाँ ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके।
यहाँ पे अब्राहम बोल रहे हैं कि भाई लाजर ने क्या करा है, जिस दुनिया में रहते हुए जो भी पीड़ा थी उसने सहली है, लेकिन अब वो आनंद में, लेकिन ये जो अब तू क्या कर रहा है, तू पीड़ा में, क्योंकि तू स्मरण कर, तूने सारी सुख विलास को तूने क्या कर लिया है, तूने पा लिया है, क्योंकि इसका ध्यान किसकी तरफ था, परमेश्वर की तरफ नहीं था इसका, अमीर व्यक्ति का, इसका ध्यान किसकी तरफ था, पैसे की तरफ। तभी तो यहाँ पर देखो उसका नाम भी हो सकता, उसका नाम नहीं होगा क्या, उसका नाम होगा, लेकिन यहाँ पर एक धनवान व्यक्ति के रूप में उसको बता रखा, लेकिन लाजर एक गरीब है उसका नाम बता रखा। अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे 13 में, पढ़े देखो क्या लिखा है 13 में,
कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वे तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा,
हाँ,
या एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा,
हाँ,
तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते।
ठीक है, यहाँ पर जो धनवान व्यक्ति है ये किसकी सेवा कर रहा है, एक तरीके से धन की, किसकी सेवा कर रहा है, धन की, धन को जो उसको मिला है, धन से वो लुफ्त उठा रहा है, धन से वो आनंद कर रहा था, सुख विलास में पड़ा हुआ था, वो मलमल के कपड़े पहन रहा था, हर प्रकार के ऐशो आराम को वो कर रहा था, क्योंकि धन उसके जीवन में आगे था। लेकिन ये जो लाजर व्यक्ति, सोचो धन की इसकी भी जरूरत, धन की इसकी भी जरूरत थी नहीं थी, लेकिन इसने कहीं भी नहीं लिखा कि इसने प्रभु से धन की लिए प्रार्थना की है या दवाई के लिए प्रार्थना किया है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। ये देखें, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये है हमारे लिए कि हमारे जीवन में आगे है कौन, किसकी उपासना हम कर रहे हैं, धन की या परमेश्वर की? अगर हम धन की कर रहे हैं, ध्यान दे दें, अगर हम धन की कर रहे हैं तो हमें पता है, ये कैसे पता चलेगा हम धन की सेवा कर रहे हैं, जिस प्रकार की सोचों को हम पूरे दिन भर सोचते हैं उससे पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में धन आ गए या परमेश्वर आ गए, कौन सी चीज ने जगह ले ली है। जी जो धनवान व्यक्ति है इसके जीवन में परमेश्वर नहीं है कहीं पर भी, इसके जीवन में धन और धन है। लाजर क्यों चुना गया, लाजर इसलिए नहीं चुना गया कि वो गरीब था, सुन रहे हैं आप, ये ध्यान दें, या अमीर व्यक्ति इसलिए नहीं चुना गया कि वो अमीर था, ये वाली बात नहीं है, या भी अमीर व्यक्ति को इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि भाई उसने लाजर की मदद नहीं करी, ये बात नहीं है, ध्यान दे इधर, ये अनुग्रह की बात है। किसकी बात है? प्रभु यीशु मसीह अमीरों को भी चुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह गरीबों को भी चुनते हैं, और इन दोनों में जो अनुग्रह था लाजर के ऊपर था, ना कि धनवान व्यक्ति के ऊपर था। और जिसके ऊपर अनुग्रह हो गया, जिसके जीवन में यीशु मसीह आ गए, उसका बेड़ा पार। और देखो यहां पे बता रखा है कि भी अब्राहम बोल रहा है कि स्वर्ग और नरक के बीच में एक बड़ी खाई है। क्या है खाई का मतलब? क्या है मतलब? कोई यहां से वहां और वहां से यहां, ये बोल रहा है कि भी लाजर को भेज दे ताकि मेरी जीव को ठंडी करे। अब्राहम बोल रहा है नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है, जो एक बार चला गया तो वापस, एक बार इधर आ गया तो उधर, ये जो जीवन है इसके अंदर हम मरेंगे, समापन है हमारी, एक ना एक दिन मृत्यु होगी, लेकिन इसके बाद जो जीवन है या नरक में या स्वर्ग में, वहां पर खत्म नहीं है। अभिषेक कहां जाओगे है? और नरक और स्वर्ग के बीच में यदि कोई खड़ा है, सुन रहे हैं आप, नरक और स्वर्ग के बीच में यदि कोई खड़ा है वह है यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह नरक और स्वर्ग के बीच में खड़ा है, और यदि हम नरक में जाने से बच सकते हैं वह है सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह एक ऐसा पुल है, उसके द्वारा हम बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपना पवित्र लहू बहाकर चुने हुए लोगों को खरीद लिया, अपनी बेटी अपना बेटा बना लिया, जो मृत्यु हमको सहनी थी उस मृत्यु को उसने सह लिया ताकि हम नरक में ना जाएं, नरक की पीड़ा को ना सहें। पता आपको बाइबल में ये भी लिखा कि वो अधोलोक में गया, तीसरे जो तीन दिन जब वो उसका शरीर कब्र में था, तो पहला पत्र में लिखा है कि वो अधोलोक में गया उन तीन दिन के दौरान। यीशु मसीह उस तीन दिन के दौरान अधोलोक में गया और कैदी आत्माओं को छुड़ा कर लेकर आया। समझ रहे हैं आप, ये दोबारा नहीं होगा। उसके बाद यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, और जी उठने का मतलब यह है कि इसके बाद एक स्वर्गीय जीवन है, स्वर्ग में एक अनंत काल का जीवन है, और उस जीवन के अंदर जो एक बारी लाजर के समान प्रवेश कर गया वो हमेशा सुख में आनंद में खुशी में वो रहेगा, जहां पे मरना नहीं है, जहां पे बिछड़ना नहीं है, जहां पे रोग नहीं है, जहां पे बुढ़ापा नहीं है, जहां पे सर के बाल गंजे नहीं होंगे, जहां पर मोटापा या पतलापन नहीं होगा, जहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जहां पर घाव नहीं है, जहां पे बेरोजगारी नहीं है, जहां पर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, मृत्यु नहीं है। यीशु मसीह उस अनंत जीवन को देने के लिए, उस अनंत जीवन के रास्ते को खोलने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, वो तीसरे दिन जी उठे, और यीशु मसीह ने हमको ये आज्ञा दे दी है, यीशु मसीह ने हमको ये आशा दे दी है कि मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा। पता आप, अगर आप देखें, ध्यान दें, ये जो लाजर है, ये जो अमीर व्यक्ति है, ये कहां पर है? स्वर्ग और नरक में, ठीक है, लेकिन उनका शरीर कहां है? उनका शरीर कहां है? है? शरीर दुनिया में कहीं ना कहीं दफना हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे अब्राहम, यहां पर अब्राहम कहां पर है? ध्यान दे, देखो ये गहरी बात है, अब्राहम कहां पर है? स्वर्ग में, ठीक है। लाजर कहां पर है? लेकिन उनकी बॉडी कहां पर है? पृथ्वी में कहीं गाड़ी गई है। समझ रहे हैं आप, ये जो अमीर व्यक्ति है जिनको यीशु मसीह ने नहीं चुना है, ये इनकी आत्मा कहां पर है? इस समय में कहां पर है? वहां पे क्या हो रहा है? पीड़ा है, आग में जल रहे हैं, कीड़े हैं, भयानक स्थिति है, लेकिन उनकी बॉडी यही कहीं दफन है, यही कहीं पर है। यीशु मसीह भी कहां पर है? कहां पर है? स्वर्ग में, लेकिन उनकी उपस्थिति यहां पर भी है। यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। क्या करने के आऊंगा? लेने के लिए आने का मतलब क्या है? ध्यान दें, ये जो लाजर है अभी समय में स्वर्ग में है, ये जो अब्राहम है इस समय में जो स्वर्ग में है, जब यीशु मसीह लेने के लिए आएंगे, जो शरीर इनका यहां कहीं जो दफन है, उनको वो शरीर दिया जाएगा जो कभी मरेगा नहीं, जिसमें रोग नहीं है, जिसके अंदर बीमारी नहीं है, जिसके अंदर चिंता नहीं है। इस दुनिया का राजा कौन है? इस दुनिया का राजा कौन है? इसलिए यहाँ पर तमाम प्रकार की पाप भरी बातें, तमाम प्रकार के रोग, उसको ये सारी बातें पसंद है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और जो उनका शरीर यहां पर है, जब उनको प्रभु यीशु मसीह जिलाएगा, उनके अंदर उस आत्मा को डालेगा जो आत्मा में स्वर्ग में, वो उनको ऐसी जगह में रखेगा, ऐसी पृथ्वी में रखेगा जहां पर मृत्यु नहीं है। और जहां का राजा कौन है? जहां का राजा कौन होगा? वहां पर वोट नहीं होंगे, मोदी दोबारा नहीं आएगा, कोई सरकार नहीं बनेगी, एक ही राजा होगा। समझ रहे हैं आप? उसी समय में जब यीशु मसीह आएंगे, ध्यान दें, जब यीशु मसीह आएंगे उसी समय में जिनको यीशु ने नहीं चुना है वो भी क्या हो जाएंगे? जिंदा हो जाएंगे। उनके अंदर वो नरक में से आत्मा इनके अंदर डाली जाएगी और इनको भयानक भयानक और भी ज्यादा पीड़ा में, और भी ज्यादा क्या कहते हैं भाई, कले में, और भी ज्यादा तकलीफ में ये वहां पर रहेंगे जब यीशु मसीह आएंगे। इस समय में जो तकलीफ है, इस समय में जो अमीर व्यक्ति, धनवान व्यक्ति जो पीड़ा में है, ये पीड़ा बहुत कम है। लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे, जब उसको वो शरीर में डालेंगे, जब उसको नर्क में डालेंगे, वो पीड़ा और भी भयानक होगी। योगेश भाई जाएंगे वहां पर हैं? या तो धन की उपासना कर लो या परमेश्वर की, या धनवा, या तो परमेश्वर हमारे जीवन में आगे होगा या धन हमारे जीवन में आगे होगा। धन एक छोटी सी वस्तु है, परमेश्वर कभी भी इंतजाम कर सकता है। स्वर्ग और नरक के बीच में यदि कोई खड़ा है वह है यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह अपने बाहें फैलाए से खड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने हमको चुन लिया, यीशु मसीह ने हमारी कलीसिया के लोगों को चुन लिया। जिनको नहीं चुना है, प्रभु यीशु मेरी प्रार्थना प्रभु उनको चुन ले, लेकिन जिनको चुन लिया है और वह ऐसा जीवन नहीं जी रहे जैसा उनको जीना चाहिए, यीशु मसीह ऐसे खड़े हुए हैं बाहें फैलाए हुए, बोले बेटा मेरी बेटी आ जा मेरे पास, मेरे बेटे मेरे पास आ जा। और शैतान क्या, यहां का राजा कौन है? शैतान। वो कैसा जीवन चाहता हम जिए? पाप भरा जीवन चाहता हम जिए, पाप से भरा हुआ जीवन चाहता हम जिए, यीशु से दूर वाला जीवन जिए। हमारा ध्यान जैसे इस धनवान व्यक्ति का धन की तरफ था, वो यीशु ऐसे ही शैतान चाहता हमारा जो ध्यान है संसार की चीजों की तरफ रहे, संसार की सुख विलास में रहे, शरीर को खुश करने वाली बात में लगा रहे। शैतान नहीं चाहता है। और यीशु मसीह क्या चाहता है? देखो एक चीज है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमारे इंतजाम को, हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा। प्रभु ये चाहता कि हम गरीब रहें, नहीं, प्रभु ये नहीं चाहता हम गरीब रहें, प्रभु ये नहीं चाहता कि हम पीड़ा में रहें। लेकिन बात यह कि हम किस चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, कौन सी चीजों पर हमारा ध्यान लगा पड़ा है। प्रभु जो है हमारा अनुग्रहकारी है, प्रभु का वचन कहता है कि भी तुम मेरे धर्म राज्य की खोज करो, तमाम वस्तुएं वो पूरी करेगा। बाइबल में लिखा है कि जवान जो शेर है वो भूखा रह सकता है, लेकिन मेरे लोग भूखे। प्रभु देखो शैतान बहुत ट्रिकी है, वो चाहता कि हमारा ध्यान से संसार की चीजों में लगा रहे, प्रभु से हट जाए। लेकिन प्रभु बोलता है बेटा तेरा ध्यान मेरी तरफ लगा रहे, ये संसार की चीजें मैं दे दूंगा, धीरे धीरे दे दूंगा, मैं अनुग्रहकारी दयालु हूं, लेकिन तेरा ध्यान मेरी तरफ रहे, इसकी तरफ ना रहे। लेकिन शैतान चाहता है कि हमारा ध्यान इसकी तरफ रहे, किसकी तरफ? संसार की चीजों की तरफ। प्रभु बोल रहा है नहीं बेटा, मेरा तेरा ध्यान मेरी तरफ रहे, ये चीजें मिलेंगी। ये चीज को हमें समझना है। अमीर व्यक्ति कहां पर है? पीड़ा में है, जल रहा है, भुन रहा है, तड़प रहा है। लेकिन लाजर क्या कर रहा है? आनंद उठा रहा है। तो यहाँ पर आगे क्या हो रहा है?
उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तुम उसे मेरे पिता के घर भेजो, क्योंकि मेरे पांच भाई हैं और वे उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए।
ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर ये अमीर व्यक्ति बोल रहा है कि भाई कैसा करो, अब्राहम जी आप लाजर को क्या करो, दोबारा दुनिया में भेज दो, और मेरे जो भाई हैं वो उसको देख के आश्चर्य कर जाएंगे, उसको देखकर देखेंगे अरे तो जिंदा हो गया, तो क्या करेंगे भाई, यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपना जीवन दे देंगे। पुनर्जन्म की बात कह रहा है, वो पुनर्जन्म है नहीं, समझ रहे हैं आप? पुनर्जन्म नहीं है, दोबारा जन्म नहीं है, एक बार ही गया तो गया, दोबारा प्रभु नहीं चाहता इस पाप भरी दुनिया में, पाप भरी नगरी में दोबारा जन्म हो, क्योंकि पाप से भरी है। प्रभु चाहता है इसमें थोड़ा सा जीवन यात्रा करने के बाद अनंत काल के जीवन में हम यात्रा में रहें, उसके साथ में रहें। और यहाँ पर देखो अब्राहम कुछ कह रहे हैं।
अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं।
मतलब क्या है, उस समय में नया नियम नहीं था। उस समय में कौन सा नियम था, कौन सा नियम था, पुराना नियम। और पुराने नियम जो बात कर रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे पुराने नियम का, अगर ध्यान से पढ़ेंगे पुराना नियम जो बात कर रहा है, यीशु मसीह के आगमन की बात कर रहा है, यीशु मसीह के आने की बात कर रहा है, नई वाचा की बात कर रहा है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरेंगे इस चीज की बात कर रहा है। और यहां पे अब्राहम बोल रहा है उसको कि भाई तुम्हारे भाइयों के पास, तुम्हारे प्रियजनों के पास, तुम्हारे रिश्तेदारों के पास अभिषेक क्या है, परमेश्वर का वचन है, क्या है। हाँ ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि कोई मरे हुए में से उसके पास आए तो क्या करेंगे वो, हाँ चाहे कोई चमत्कार हो जाए तो क्या करेंगे। इतना याद रखें, प्रभु कभी चमत्कार करते हैं, कभी चमत्कार नहीं करते हैं, समझ रहे हैं आप। प्रभु किसी को कभी चमत्कार के द्वारा चुनते हैं, बिगर चमत्कार के द्वारा चुनते हैं, समझ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से यीशु मसीह चुनते हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन हमारे जीवन में सही वचन होना बहुत जरूरी है, सुसमाचार होना बहुत जरूरी है। अगर सुसमाचार हमारे जीवन में है, अगर वचन हमारे जीवन में सही तरीके से है, चंगाई हो या ना हो, चमत्कार हो या ना हो, कमी पूरी हो या ना हो, हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे समय पर सुने या ना सुने, हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, जिसने मृत्यु को हरा दिया वो हमको जानता है, हमारी तमाम बातों को जानता है, वो जो चाहता है वो अच्छा चाहता है हमारे जीवन में। और यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि भाई अगर वो मुर्दों में से कोई जिंदा होकर जाएगा तो क्या करेंगे, वो विश्वास करेंगे। लेकिन अब्राहम देखो यहाँ पे कुछ बोलते हैं, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे अब्राहम जो बोल रहा है कि अगर जो इस वचन की नहीं मान रहा है, वचन को नहीं सुन रहा है, वचन पे विश्वास नहीं कर रहा है, तो अगर कोई मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे उस पर भी विश्वास नहीं करेगा। जो मुख्य जो चीज परमेश्वर ने हमको जो दी है दुनिया में रहते हुए, वह प्रभु का वचन, क्या है, प्रभु का वचन। अगर ये हमने अपने अंदर उतार लिया, समझ रहे हैं आप, ये अगर हमने अपने अंदर उतार लिया तो हमें कोई भी किसी प्रकार की कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। और हमें, हमें पता है किस प्रकार से जीवन के अंदर जीना है, किस प्रकार से। देखो यहां पर क्या है, एक अमीर व्यक्ति है और यहां पर कौन है, गरीब व्यक्ति है। अमीर व्यक्ति कहां गया, गरीब व्यक्ति कहां गया, क्यों गरीब व्यक्ति स्वर्ग में गया, क्या वो गरीब है इस वजह से, अभिषेक गरीब व्यक्ति स्वर्ग में क्यों गया, क्या वो गरीब है इस वजह से गया है,
नहीं।
अमीर व्यक्ति नरक में क्यों गया, क्या वो अमीर है इस वजह से गया है,
नहीं।
किस वजह से ये जो गरीब व्यक्ति स्वर्ग में गया है, क्योंकि अनुग्रह प्रभु का उसके ऊपर हो गया। ये अमीर व्यक्ति नरक में क्या कर रहा है, पीड़ा में है, तड़प रहा है, बिलख रहा है। ये गरीब व्यक्ति स्वर्ग में क्या कर रहा है, आनंद मना रहा है। कब तक के लिए, क्या अभी भी आनंद मना रहा होगा, और क्या ये अमीर व्यक्ति अभी भी पीड़ा में होगा, कब तक रहेगा, हमेशा के लिए। जाओगे क्या अभिषेक, मुझे तो लग रहा है नहीं ना। अमीर व्यक्ति अब्राहम से क्या विनती कर रहा है, लाजर को क्या कर दे तू, भाई मेरे भाइयों के पास भेज दे, मेरे भाइयों के पास भेज के क्या कर, उनको बताने के लिए भेज दे। लेकिन अब्राहम क्या बोल रहा, नहीं, उनके पास क्या है, प्रभु का
वचन।
और आज हमारे पास क्या है, प्रभु का
वचन,
जो जीवन बदल सकता है। वो क्या, कौन बदल सकता है, प्रभु का वचन। चमत्कार जीवन नहीं बदलता है, प्रभु का वचन जीवन बदलता है। विश्वास कौन देता है, चमत्कार नहीं देता है, विश्वास कौन देता है, प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा हमको देता है। इसलिए ध्यान दें, अगर हम पढ़ने वाले इंसान, अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम हिंदी पढ़ना जानते हैं, प्रभु का वचन पढ़ें। अगर प्रभु का वचन पढ़ेंगे तो हम समझदार मसीह बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और स्वर्ग और नरक के बीच में कौन खड़ा है? कौन खड़े हैं? यीशु मसीह। अगर हम स्वर्ग जा सकते हैं तो रास्ता कौन है? अगर हमारे पापों को क्षमा कर सकता है वो कौन है? अगर हमें नरक में जाने से बचा सकता है वो कौन है? अभिषेक कौन है? यीशु मसीह। साक्षी प्रभु के सम्मुख जाएं, उस यीशु मसीह के सम्मुख जाएं। प्रभु आप हमारी कलीसिया के हर एक जन को, जैसे लाजर को आपने अनंत जीवन के लिए चुन लिया, वैसी आप प्रभु हमारी कलीसिया के हर एक जन को अनंत जीवन के लिए चुन ले प्रभु, ताकि उस पीड़ा में न जाए प्रभु, उस तड़प के अंदर ना जाए प्रभु। संभाले प्रभु, यीशु के नाम से आमीन।